महाराज के पास सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में समाज की ओर से विनती, हे स्वामी अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को प्रताप करने की अनुकंपा करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हमारा जीवन हम इतना ऊंचा बना सकते हैं जितना कि तीर्थंकर की आत्मा अपने जीवन को तीन लोकों में पूज्य बना लेती है। हमारे अंदर ऐसी संभावनाएं निहित हैं, बस सिर्फ ये है कि हम उन संभावनाओं को उन पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज को अपने भीतर और उद्घाटित करें। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम पिछले दिनों से एक प्रयास कर रहे हैं, विचार करने का प्रयास। विचार भी एक तरह का फोर्स है, और किसी चीज पर भी लगातार अगर वो फोर्स डाला जाए तो परिवर्तन होता है, देर सबेर होता है। हम इस विचार की प्रक्रिया से लगातार स्ट्रोक दे रहे हैं, एक लगातार हैमरिंग जिसको कहते हैं, लगातार हम चोट कर रहे हैं अपने ऊपर विचारों के द्वारा, अपने आचरण के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, सबके ऊपर एक चोट इन विचारों की प्रक्रिया से डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इस प्रक्रिया में सफल होंगे तो संभव है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। और ये एक जो निरंतर विचार की प्रक्रिया है, उसमें हमने पिछले दिनों बहुत सारी बातों पर विचार कर लिया है, कैसे कैसे हम अपने उन विचारों के माध्यम से अपनी भावनाओं को निर्मल करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, पूरे जीवन को उतनी ऊंचाई दे सकते हैं जितनी की तीर्थंकरों ने और अपने जीवन को ऊंचाई दी है। वो जो तीर्थंकर अपने जीवन को ऊंचाई देते हैं, वे अपने पूर्व जीवन में उस ऊंचाई को पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, या कि ऑटोमेटिकली उनको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं? कोई भी चीज बिना कारण के तो नहीं होती, कोई भी कार्य होता है तो बिना किसी कारण के नहीं होता। और कारण भी कम से कम दो प्रकार के तो होंगे, एक भीतर का पुरुषार्थ, एक बाहर से जो परिस्थितियां हैं उनके साथ एडजस्टमेंट। एक बाहर का हमारा आचरण है, एक बाहर का व्यवहार है, एक अंतरंग की जो वास्तविकता है, जो परिवर्तन है, वो दोनों चीजें मिलकर ही कोई कार्य घटित होगा। तो अंतरंग में एक तीर्थंकर नाम कर्म है जिसको कि पूर्व जीवन में किसी केवली की, शुद्ध केवली के पादमूल में बैठ करके पवित्र भावनाओं के द्वारा, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के द्वारा और तीर्थंकर प्रकृति अर्जित की जाती है, यह हमने समझ लिया है। लेकिन उसके लिए बाहर हमें और क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो बाहर हम अपने जीवन में जो भी व्रत, नियम, संयम, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, ये सारी बातें हमें बाहर से करने पड़ेंगे। लेकिन इन बाह्य क्रियाओं के साथ साथ हमारे अंतरंग में ऐसी भावना आनी चाहिए, ऐसी निर्मलता या ऐसी विशुद्धि आनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना है। ये जितना भी हम बाहर से जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी ज्ञान हासिल कर रहे हैं, बताइए आप पढ़ रहे हैं तो उद्देश्य क्या है? कल के दिन परीक्षा होगी, उसमें मुझे ज्यादा नंबर आएंगे, एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि मैं इस ज्ञान के माध्यम से बाद में अपने जीवन का कल्याण करूंगा, इतना तो करूंगा ही कि मेरा ज्ञान बढ़े, सो उसके लिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। लेकिन मेरे ज्ञान बढ़ने के साथ साथ और मेरे आचरण में निर्मलता आनी चाहिए, इसके लिए मैं ज्ञान हासिल करूं। तो जो भी हम बाह्य क्रिया करते हैं उससे हमारे अपने अंतरंग में परिवर्तन हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति तभी बनती है, 12-16 कारण भावनाएं तो बाहर से भाई जाती हैं, पर वास्तव में भीतर क्या भावना रहती होगी, मैं ये सोच रहा हूं। मुझे तीर्थंकर बनना है, ऐसी भावनाएं क्या? मुझे सब जीवों से आदर पाना है, क्योंकि कहते हैं कि तीर्थंकर बनने के बाद तीनों लोक के जीवों से बहुत आदर मिलता, बहुत सम्मान मिलता, तो इसलिए मुझे तीर्थंकर बनना है क्या? नहीं, मेरे अंदर एक ही भाव है कि यहां इस संसार में सब दुखी हैं, मैं स्वयं भी, और सब जीवों को कैसे वो शाश्वत सुख प्राप्त हो, कैसे सब अपना कल्याण करें, कैसे इस संसार के आवागमन के दुख से बचें, प्राणी मात्र का कल्याण कैसा हो, ऐसी भावना के साथ जो कुछ भी किया जाता वो सब तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनता। इतनी विशुद्धि होनी चाहिए, दर्शन विशुद्धि हर एक के साथ जोड़ लेना। मैं जब पिछले दिनों सोच रहा था कि शक्ति तस्त्याग और त्याग धर्म में क्या अंतर है, तो हमने थोड़ा सा अंतर तो बता दिया था, फिर लेकिन हम भूल गए ये कहना, ये कि हमें भूल क्या गए, वो याद ही नहीं था उस समय, सोचे नहीं था वैसा, आज अभी अभी जो है वो ध्यान में आए कि अरे हम तो ये भूले ही जा रहे हैं कि ये सारी भावनाओं में मुख्य भावना क्या है। परिणाम इतने निर्मल है दर्शन विशुद्धि भावना में, उस दर्शन विशुद्धि भावना से युक्त होकर के हमने त्याग करा है, ऐसा नहीं किया है। त्याग तो बहुत सारे लोग कर देते, बहुत अलग अलग भावना से त्याग करते हैं, लेकिन यहां कौन सी भावना है त्याग की? दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे को, दूसरे की के अनुराग वश, और दूसरे से अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए, धर्मानुराग, भावानुराग उत्पन्न करने के लिए, प्राणी मात्र के अंदर धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जावे, इसके लिए मैं त्याग कर रहा हूं। आज एक कदम आगे बढ़ते हैं, शक्ति तस तप, 12 तप अपन ने समझ लिए। तप एक धर्म भी है 10 धर्मों में से, फिर शक्ति तस तप के मायने क्या हुआ? एक ऐसी तपस्या जिसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण, बताइए। लोकोपकारी तपस्या, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, लिख दिया। एक मेरी भावना का विचार करें आप तो सारे ग्रंथों की क्रीम है, सब आ गया उसमें, अगर उत्ती भी आ गई, अकेली कंठस्थ नहीं, जीवन में उतर गई मेरी भावना तो हो गया काम, और कहीं नहीं जाना आपको, ये सब उसी का विस्तार है। मान लो आप क्या कह रहे हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, सब बातें इसमें आ गई। ये तप तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनेगा। अनिगूहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए, और मार्ग अविरोधी काय क्लेशा शक्तितस त्यागा तपा, शक्तितस तपा, कैसा तप? मार्ग के विरुद्ध ना हो, मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाला हो वो तप, और जिसमें काय क्लेश की प्रमुखता, इतनी कंडीशन है। अपनी शक्ति अनिगूहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना है, मार्ग से विपरीत नहीं चलना है। और तो कह रहे हैं बिना खेद के स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, जिसमें ऐसा सामान्य अर्थ निकाल लेते हैं कि स्वार्थ त्याग मतलब निस्वार्थ भाव से, इतना सा अर्थ नहीं है। मेरी भावना के अर्थ निकालना भी आसान नहीं है, कई बार ऐसा लगने लगता है। तो सरल सी वो कोई भी निकाल लेगा स्वार्थ त्याग मतलब महाराज स्वार्थ छोड़ के तपस्या करना, नहीं। स्वार्था स्वएव प्रयोजनम यस्य सा स्वार्था, जिसमें आत्मा का प्रयोजन है एक चीज, और अपने सर्वस्व त्याग के द्वारा जो तपस्या की जाती, वो जिसने अपने बाह्य समस्त परिग्रह को छोड़ दिया त्याग, और काय के लिए छोड़ा परिग्रह, और ज्यादा मिल जावे स्वर्गों को, अपने आत्मा के कल्याण के लिए और बिना खेद के बिना किसी संक्लेश के। तपस्या वही है जिसमें कि संक्लेश ना हो, इसलिए लिखना पड़ा कि अनिगूहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति को बिना छिपाए, अपनी शक्ति से अधिक भी नहीं करना। अपनी शक्ति छिपाएंगे वो भी संक्लेश है, और अपनी शक्ति से ज्यादा करेंगे वो भी संक्लेश है, दोनों जगह संक्लेश है। अपनी शक्ति को छिपा लिया तो भीतर भीतर लगता रहेगा आराम तलवी, काय स्वाही लास परिणाम, विषयाशक्त व्यक्ति, आशक्त व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, ध्यान रखना। इसलिए लिखना पड़ा कि जो अपनी शक्ति को नहीं छिपाता वो भी संक्लेश से बच जाएगा, और शक्ति से अधिक भी तपस्या नहीं करना, नहीं तो खेद उत्पन्न करेगी वो तपस्या। और कंडीशन है कि बिना खेद के। अब बताइए, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति हासिल होगी। पहली चीज, लोकोपकार की भावना से अपना सब कुछ छोड़ दिया, सेवा वो ही कर सकता है, त्याग वो ही कर सकता है, तपस्या वो ही कर सकता है जो अपने निजी स्वार्थ छोड़ देता है, जो विषयाशक्ति छोड़ देता है, जिसको अभी स्वयं अपने शरीर के को सुख पहुंचाने की भावना है, वो व्यक्ति कभी भी तपस्या कर ही नहीं सकता, और उसकी तपस्या प्राणी मात्र का कल्याण भी नहीं कर सकती, उसका भी नहीं कर सकती। हाँ, ये जो भोगवादी दृष्टिकोण है वो छोड़ना पड़े, इसलिए लिखा है उसमें। ये सारी अपन अपनी भाषा में कुछ भी कह लो, जो लिखा है उसमें उसके अनुसार भोग की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। विषयाशक्त व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, परोपकार की भावना होनी चाहिए। अब चलो दूसरे ढंग से समझ लेते हैं, तीन तरह की तपस्या है, उसमें से कौन सी तपस्या कहना चाह रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति के लिए। पहली तपस्या है जो शास्त्र और गुरु के विपरीत अपने मन माने ढंग से की जाती है, वो तपस्या भी आज बहुत से लोग करते हैं। आज तक जो किसी ने नहीं की, इतिहास में पहली बार, विश्व में पहली बार मैं कर रहा हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, इस भावना से की जाने वाली सारी तपस्या तामसिक है, शास्त्र में निहित और गुरु की परमिशन के बिना, शास्त्र में निहित विधि के बिना और गुरु की परमिशन के बिना जो तपस्या की जाए वो सब कोई कल्याण करने वाली तपस्या नहीं है। हां, तपस्या और त्याग बिना गुरु बनाए शुरू ही नहीं होती, अगर दोनों होंगी तो वो कोई काम की नहीं। शास्त्र रास्ता बताते हैं, गुरु सहारा देते हैं, और दोनों नहीं हो तो आप तपस्या कितने ही कर लीजिएगा। ठीक रास्ता बताने वाला भी चाहिए और रास्ते में सहारा देने वाला भी चाहिए, आप कैसे अपनी अकड़ में चले जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आप कैसे तपस्या कर सकते हैं बिना मार्ग निर्देशक के और बिना सहारे के। और दूसरी है मान सम्मान की आकांक्षा से की जाने वाली तपस्या, वो तपस्या राजसिक है, वो तपस्या भी यहां नहीं है। यहां तो कर्म संचयार्थम तप्यते इति तपः, कर्मों के क्षय के लिए जो तपस्या की जाए शास्त्र की विधि के अनुरूप गुरु की आज्ञा लेकर के जो की जाए वही सात्विक तपस्या, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बन सकती है। हम भावना भाएं कि हमको तपस्या करनी है, ठीक है, तो भावना भाने से पहले हमें देख लेना पड़ेगा कि हमारी देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है या नहीं है। भावना तो है, भावना तो सब भा लेंगे, लेकिन ये भावना कहां भानी है, किसी केवली श्रुत केवली के पादमूल में ये कंडीशन है। इसके मायने हैं कि पूरी श्रद्धा से पूरे समर्पण से जो तपस्या की जाए, तपस्या करना कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं, कठिन तब हो जाती जब उसके साथ मान सम्मान की भावना आ जाती है या संक्लेश आ जाता है, दोनों स्थितियां। अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो संक्लेश होगा, और मान सम्मान मिलेगा तो अहंकार आएगा, दोनों ही गड़बड़ियां। और मैं अपने ढंग से मनमानी तपस्या कर रहा हूं तब भी अहंकार ही आएगा। इसलिए सबका निषेध करके सात्विक तपस्या की चर्चा की, और सात्विक तपस्या के मायने हैं परोपकार की भावना से की जाने वाली तपस्या, एक ऐसी सेवा, एक ऐसा त्याग जिसके साथ परोपकार की भावना जुड़ी हुई है। तपस्या के साथ भी परोपकार की भावना जुड़ी है, बताइए कैसे? एक उदाहरण से समझ लेते हैं। बौद्ध मत में एक उपगुप्त हुए हैं जो कि बहुत सुंदर थे और सन्यासी हो गए थे। उनके उस सौंदर्य से बहुत लोग प्रभावित थे, जो उस समय वासव दत्ता एक नगर बधु थी, देवी उपगुप्त के सौंदर्य से प्रभावित थी, और उन्होंने उपगुप्त से सन्यास लेने के पहले निवेदन किया था कि क्या हमारे साथ गृहस्थी बना के पूरे जीवन आप रह सकते हैं? तो उपगुप्त ने कहा कि जब तुम्हें आवश्यकता हो मेरी तो मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, अभी तो मैं सन्यास ले रहा हूं। आश्चर्य हुआ था वासव दत्ता को कि सन्यासी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा, अभी तो मैं सन्यास ले रहा हूं। तो जब सन्यास आप ले लेंगे तब मेरे लिए आपकी क्या आवश्यकता पड़ने वाली है, ऐसा लगता है? वासव दत्ता को उस समय यही लगा। और 20 वर्ष गुजर गए इस बातचीत हुई घटना के बाद। एक दिन जब रात के धुंधलके में अंधेरे में उपगुप्त आश्रम से बाहर कहीं किसी जगह जा रहे थे कि अचानक रास्ते में किसी के कराहने की आवाज आई, और उसी अंधेरे में टटोलते हुए उस आवाज तक पहुंचे, और कौन है ये भी नहीं देखा, मदद करनी है तो उठा करके ले आए और ला करके ठीक स्थान पर सेवा उपचार करना शुरू कर दिया। रोशनी में मालूम पड़ा आने पर वो तो बेहोश हो गया है जिस व्यक्ति की सेवा की जा रही, लेकिन मालूम पड़ा कि ये तो वही है, वासव दत्ता ही है, और उसकी सेवा में लग गए। 2-3 दिन के बाद जो है उसे होश आया, तो वो उपगुप्त ने कहा कि पहचाना मुझे? तो वासव दत्ता ने कहा कि पहचान लिया, क्योंकि आप तो ज्यों के त्यों हैं, रूप तो मेरा बदला है, क्योंकि 20 बरस में नगर बधु होने की वजह से सिवाय विषया शक्ति के और उन्होंने कुछ जाना ही नहीं था, और जो लोग विषयों में आशक्त होते हैं वे दूसरे का उपयोग कर सकते हैं, दूसरे की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितने लोग उनको मिले थे किसी ने सेवा तो नहीं की थी, उनका उपयोग जरूर किया था, और देह का उपयोग करने से देह जर्जर हो चुकी थी वासव दत्ता की, और जिस दिन जर्जर हो गई तो रोड के किनारे किनारे बेई लोग उसे फेंक के गए थे, और आज कौन संभाल रहा है जिससे एक दिन कहा था कि क्या आप मेरे साथ गृहस्थी बना करके जीवन भर रह सकते हैं। बड़ी अजीब तरह की घटना है ये, आपको बड़े अलग ढंग की घटना बता रहा हूं, ऐसी घटनाएं मैं बहुत कम सुनाता हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि एक तपस्या का ढंग क्या होता है, सेवा किस तरह से की जा सकती है, हम और आप किस दिशा में सेवा कर रहे हैं। हम तो अपने साधर्मी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो तो एक हीन और पतित व्यक्ति के साथ, वो भी एक तपस्या है जिसने कहा था कि 20 साल पहले कि मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं, कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं आ जाऊंगा। आज जबकि बाकी लोगों ने उसे छोड़ दिया है, तब आज वो कह रहे हैं कि आज तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो गया। ये तो सिर्फ एक प्रतीक है, मैं आपसे ऐसा कुछ करने कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपसे करने के लिए ना, ऐसा कोई जीवन में अपने कोई घटना ऐसी घटित होने वाली, मुझे इस घटना से क्या ले लेना है कि क्या हमारी तपस्या दूसरे का उपकार कर पाती है? और अगर वास्तव में सात्विक तपस्या होगी तो दूसरे का उपकार ही करेगी। ध्यान रखना, जिसकी जितनी ज्यादा विषयाशक्ति कम है वो अपनी चीजों को दूसरे को दे सकेगा, और जो स्वयं अपनी चीजों में आशक्त है वो नहीं। जो जितना अपने शरीर से अनाशक्त है वो अपने शरीर के द्वारा दूसरे की उतनी ही सेवा कर पाएगा, उतना ही कल्याण कर पाएगा, ये ध्यान रखना। अपने ही शरीर की सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ व्यक्ति दूसरे का उपकार कर सकेगा क्या? तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि तप तीन तरह का है, मन का है, वाणी का है और शरीर का तप है। और मन का तप क्या है? अपने परिणाम निर्मल रखना मन का तप है। और शरीर का तप क्या है? शरीर से काय क्लेश करना, ये शरीर का तप है। और शरीर से दूसरे की सेवा करना, अपने आप सेवा हो जाएगी जब आप इस शरीर को कष्ट सहिष्णु बना लेंगे। काय क्लेश के मायने ये नहीं है कि शरीर को कष्ट में डालना, शरीर को कष्ट में डालना नहीं, शरीर पर आने वाले कष्टों को शांत भाव से सहन करना, ये कहलाएगा काय क्लेश। इतना कष्ट सहिष्णु हो गया शरीर कि इस पे आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं उनको मैं शांत भाव से सहन करता हूं, और इतने नहीं इस शरीर के द्वारा गुरुजनों की सेवा करना, उनकी विनय करना, ये है शरीर का तप। स्वयं शरीर से तपस्या करना, इससे आशक्ति कम करना, इसके द्वारा दूसरे का उपकार करना, गुरुजनों की सेवा करना और विनय इत्यादि करना, ये सब शरीर का तप है। और वाणी का तप क्या है? वाणी का तप है निरंतर चिंतन मनन और धर्मोपदेश करना, ये वाणी का तप है। विनोबा ने 40,000 किलोमीटर की यात्रा की और उसमें प्रतिदिन 3 घंटे तक और उपदेश दिया, रोज 3 घंटे प्रतिदिन, और उसके अलावा 6 घंटे लोगों की पृथक पृथक समस्याओं को सुनकर उनका समाधान दिया। वो लिखते हैं कि इतने घंटे उन्होंने वाणी का तप किया। वाणी का तप है, वाणी से और कोई वचन नहीं बोले जाएंगे, सिर्फ जो है जो हमें हमारे अरंत और तीर्थंकर भगवान ने कहा है उसी का चिंतन मनन करना और उसे ही वाणी में बोलना, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है वाणी का। दूसरे के उपकार की वाणी बोलना वाणी का तप है। अभी तो अपन को ये तप, अपन आप क्या सोच रहे थे कि सामान्य रूप से तप तप कहो ना तो ऐसा लगता है कि जा चीज छोड़ दे, बात चीज छोड़ दे, जा छोड़ दो, जा छोड़े हैं समाज तप होगा। अरे इतना नहीं है, या कि भी होते हमने देखी कि अरे महाराज बिल्कुल खड़े आसन और धूप में खड़े थे, बड़ी तपस्या कर रहे थे। ये तप, ये तो बहुत आसान तप है, ज्यादा कठिन नहीं। जिसका मजबूत शरीर है बज्र वज्र नाराज का सो कर लेगा वो, ये ज्यादा कठिन नहीं है। वाणी का तप, वो कह रहे निरंतर स्वाध्याय करना वाणी का तप है। मैं पढ़कर के दंग रह गया। निरंतर अपने परिणामों को भला बनाए रखना, ये मन का तप है। कहां भले बने रहते, परिणाम संक्लेशित हो जाते, खेद नहीं होना चाहिए। शरीर से निरंतर कष्ट को सहन करना, कोई शरीर के सुख पहुंचाने की अभिलाषा नहीं है। काय स्वाही लास परिणामे, रोज हमको प्रतिक्रमण में कहना पड़ता कि यदि मैंने शरीर के सुख के लिए कोई साधन जुटाए हों, भावना की हो कि मेरे शरीर को सुख मिले, तो वो मेरा परिणाम मिथ्या हो। बताइए, शरीर को सुख पहुंचाने का अगर भाव है तो हमारी तपस्या अभी शरीर से नहीं हो रही है। भले ही आप शरीर को कष्ट में डाले हैं, पर भावना यही है कि शरीर को सुख पहुंचे। कई लोग शरीर को कष्ट में डाल के भी सुखी होते हैं, ये ध्यान रखना। ये मनोविकृति है, भी अपने हाथ से अपने आप को हंटर मारत और रास्ता में निकलत। अपन देखते अरे भैया कांटों में डले हैं, आगी धरे मूल पे तप रहे, नाना प्रकार से तप करते हैं। वो सब तप वो शरीर का भी तप नहीं है, न वाणी का है, न मन का है, ये ध्यान रखना। इस वाले तप की नहीं चर्चा कर रहे हम, इसीलिए हमने पहले कंडीशन लगा दी थी। हमने क्या लगा दी, आचार्यों ने कहा कि परोपकार की, स्वार्थ और त्याग, त्याग से परोपकार होगा और स्वार्थ अपने आत्मा के प्रयोजन के लिए जो किया जा रहा है और बिना खेद किया जा रहा वो सब तप है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत रेयर है, बहुत थोड़े लोग कर पाएंगे। तप के बारे में बहुत सामान्य रूप से कह दूं, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा कठिन तो हो गया विषय, पर सरल कर लेते हैं। हाँ, हमने पहले ही बताया था इस बारे में, उसको फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि जो लोग समझ रहे हो कि तप करना बहुत कठिन है उनको लगने रहेगा कि कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सुबेरे भोजन में थाली पे बैठे और माने जो है दूध रखा और उसमें 4 चम्मच रोज शक्कर डाल के पीते थे, सो उस दिन माँ से कह दिया कि अभी आज मेरा शक्कर का त्याग है, तो शाम को भी नहीं लोगे क्या? शाम का कहां कह रहे हैं, हम तो आज के सुबह के भोजन का कह रहे हैं। सुबह भोजन में मेरा शक्कर का त्याग है, मेरा रस परित्याग नाम का तप हो गया। ये कठिन लगा आपको? बताओ आप कौन सी चीज कहां कठिन है। इसका नाम है तप। मैंने अपने इच्छा को रोक लिया, इच्छा निरोधा तपा। मेरे मन में इच्छा तो थी कि 4 चम्मच शक्कर डाल के पीऊंगा, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मां अब रहने दो, ऐसे ही पी लूंगा मैं, ये मेरा तप है। वो जो 4 चीजें तुम रख रही थी ना, 4 मत रखो, 2 ही रखो, 2 तो तुम वापस रख। अरे नहीं खा लो, नहीं 2 ही से ठीक, 2 से काम चलाऊंगा, मेरा वृत्ति परिसंख्यान। ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। कहां जा रहे हैं आप बहुत दूर तपस्या के लिए, वहीं के वहीं पर। ज्यादा कठिनाई नहीं, काय क्लेश शरीर के द्वारा। आज तो मैंने मुनि जनों की सेवा करी, मैंने तप कर लिया, ध्यान रखना। आहार दिए हैं मैंने तप ली, हाथ का तप है ये। मैं तो ऐसी व्याख्या कर रहा हूं इस तप की, ये ऐसे कदम कदम पर तपस्या हो रही, प्रसन्नता पूर्वक मन प्रसन्न है, वाणी भी गदगद हो रही है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मेरे हाथ पवित्र हो गए। मैंने शरीर के द्वारा तपस्या कर ली आज। मैं सबेरे से तैयार हो रहा था, मैंने 2-3 सूखा करके रखी थी और ये गया मैं और उधर खड़ा हुआ हूं, महाराज 1 ग्रास ले लें मैं वापिस चले जाऊं, ये तप है। आप क्या सोच रहे हैं, शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप है ये। क्या उतनी देर के लिए काय सहायिला परिणाम, शरीर को सुखी बनाने का कोई परिणाम नहीं है। आप कभी देखेंगे इतनी भीषण ठंड में और दुपट्टा धोती पहने थर थर कांप रहे हैं फिर भी आहार दे रहे हैं, इसको मैं तप मानता हूं। जब इधर काफी गर्म हो जाता है और फिर भी लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये तप है। अगर हमने उतनी देर के लिए अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया है, मन में तो बहुत था कि अभी जाएं और फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के पिए, भारी गर्मी लग, नहीं, 1 घंटे का मेरा त्याग तप हो, 1 घंटे का त्याग नहीं, 1 घंटे की तपस्या हो गई, ये है शरीर का तप। और वो भी परोपकार की भावना से और करने लगे तब तो मजा आ जाए। मैं आज जैसे मैंने आपको उदाहरण नहीं सुनाया था कि पौआ भर तो आए हैं, बटरा महंगी है बाजार में, पौआ भर आए हैं, पौआ भर मतलब समझे 250 ग्राम आए, वो 5 जने हैं, एक की छटाक छटाक भर बैठी, 50-50 ग्राम, 50 ग्राम में कितने चढ़े भैया। लेकिन इसी में तपस्या कर सकते हैं और वो भी परोपकार की भावना से कि मैं अपने हिस्से के 50 ग्राम मां के लिए छोड़ रहा हूं, मां आज मैं नहीं खाऊंगा, ये देख लिया है मैंने कि इतनी सब्जी बनी इतनी थोड़ी सी है और अगर सब हम ही लोग खा लेंगे तो मां को नहीं बचेगी। मां आज तो मैंने तो सोच लिया था मंदिर में ही, सो झूठ बोल दिया, मां मैंने मंदिर में सोच लिया था कि बटरा नहीं खाऊंगा आज, मेरा बटरा का त्याग। इसके पीछे कौन क्या चीज है, क्या इंटेंशन है, इसके पीछे परोपकार है। मेरी तपस्या तो हुई नहीं, मैंने अपनी जिब्बा पर अंकुश रख लिया, मेरी तपस्या तो हो गई, लेकिन परोपकार की भावना से बड़े आसानी से ऐसा तप किया जा सकता। अपने सुख को दूसरे के सुख के लिए छोड़ देने का नाम तपस्या, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वाणी का हो, चाहे मन का हो। चलो और आसान कर लो, अपने सुख छोड़ दिए हमने किसके लिए, दूसरे के सुख के लिए, ये हो गई तपस्या। और ज्यादा बहुत कठिन नहीं है भैया, हमारे अपने परिणाम जिससे निर्मल हो जाते हैं तो सब चीजें आसान हो जाती। मैं तो आपसे आखिरी दिन भी जाते जाते यहां से कहूं, जाते समय भी कहूंगा तो यही कहूंगा कि जिसके जितने परिणाम निर्मल वो उतनो धर्मात्मा, उसके अंदर सब धर्म आ जाएंगे। चाहे जैसी व्याख्या कर लो आप, आखिरी में यही आएगा अल्टीमेटली, चाहे शरीर से तपस्या कर लो, चाहे वाणी, वाणी उसकी प्रेम से भरी है जिसका मन प्रेम से भरा है, शरीर उसका प्रेम से भरा है जिसका मन भरा हुआ है। हाँ, शरीर से भी, शरीर एक बॉडी लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना, ये लैंग्वेज तो है ही, ये टंग्स की लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज होती, मालूम पड़ जाता कि अकड़ में बैठे हो कि झुक के बैठे हो, कि कैसे देख रहे हो, अकड़ के देख रहे हो कि विनम्रता से देख रहे हो, ये बॉडी लैंग्वेज है, सब समझते हैं इस चीज को। ये शरीर का तप है कि उसमें मैं पढ़कर के दंग रह गया कि शरीर का नम्रीभूत होना ये शरीर का तप है। बताइए, शरीर नम्रीभूत है, वाणी विनय से भरी हुई है, मन प्रसन्नता से भरा हुआ, ये सब तपस्या है। बताइए, आपको आखिरी उदाहरण दूं और अपनी बात पूरी करूं, आधे घंटे मेरा समय हो गया। आचार्य महाराज के जीवन की वो घटना आपको शायद मैंने पहले सुनाई हो, मुझे याद आ रहा है कि नहीं सुनाई इसलिए मेरा मन बन गया। हम लोग मुक्तागिरी से और वापस आ रहे थे चतुर्मास करने के बाद, ठंड का समय था, दिसंबर महीने का समय था, और उस समय वो अंबाड़ा में और रात गुजारना पड़ी, रास्ता भूल गए थे तो 9 किलोमीटर आगे निकल गए दूसरे रास्ते पर, हीवरखेड़ से चले थे और अंबाड़ा बीच में लिखा था 1 किलोमीटर और वहां पहुंच गए। पता लगा कि ये तो अपन गलत आ गए, इसलिए अपन सही जगह पे नहीं पहुंचे, वहां तो पहुंचने नहीं था। अब क्या करें, कहां रात्रि विश्राम होगा, तो अंधेरा तो होने वाला है, तो खेत में वो ज्वार वगैरह रखने के लिए और एक बना दिया जाता है, हाँ गल्ला रखने के लिए वो बना हुआ था। ताचेज ने कहा ये अच्छी जगह, बैठ जाओ। हम लोग सब उसमें बैठ गए। मैंने सुना दिया शायद पहले, फिर से सुना देता, नहीं सुना, नहीं सुना, तो उसमें जाकर के बैठ गए। अब वो 1 फीट ऊंचा बनाया था उसको और चारों तरफ से उसी की वो लगाई थी, सिट्टों की ही बाउंड्री, एक तरफ से पूरा ओपन खुला हुआ था और बाकी बंद था, कवर्ड था, नीचे से भी ऊंचा 1 फीट ऊंचा था, नीचे पानी भरा हुआ था। उसमें जाकर के बैठ गए, बैठते समय तो लगा कि अच्छी जगह पा गए अपन। अब ना वहां चिटाई थी, ना लोगों को खबर थी, संघ अकेला था, 1 किलोमीटर दूर गांव है, उनको भी खबर नहीं पहुंच पाई कि कोई महाराज आके रुके, और जहां पहुंचना था वहां तो हम पहुंचे नहीं, वहां सब लोग पहुंच चुके हैं। अब सिट्टे के ऊपर जो है, और हम तो छुलक थे उस समय, एलक थे तो लगोटी है, तो अपने को नहीं समझ में आया कि नीचे कुछ गड़बड़। जब आचार्य जी बैठे और उनने एक नहीं तो आचार्य जी बैठने के बाद ऐसा ऐसा करें हमने तो कभी नहीं देखा, तो एक बार ऐसे बैठे तो बैठे, अपन को 2-4 बार करना पड़ता। तो आचार्य जी ने 1-2 बार ऐसे थोड़ा सा ऐसे किया, तो अपने को लगा कि आचार्य जी ऐसा क्यों, ठीक आसन ठीक नहीं बन पा रही होगी इसलिए आसन बना रहे होंगे। लेकिन फिर ध्यान आया कि अरे सामायिक में तो अपन सब उतार के ही करें, देखो आचार्य जी तो ऐसे बैठे, तो अपन ने भी जो है जब उतार के लंगोट बैठे तब समझ में आई कि क्यों 2-4 बार ऐसे करना पड़ा, क्योंकि सिट्टे चुभ रहे थे, सिट्टों में जो फांसे होती है वो चुभ रही थी, आप जरा हिलेंगे तो और चुभेंगी, चुपचाप बैठो, और चुभती है और अपन सोचते कि चुभ रही तो थोड़े हिल करके उसको ठीक कर लें, तो जैसे ही हिलते हैं तो और ज्यादा चुभती। अब चुपचाप डठुआ जो है वो बैठे हैं चुपचाप, अब विचार कर रहे हैं कि चिटाई आ जाएगी 9 बजे तक तो ठीक रहेगा। अब उधर कहाँ कहाँ चिटाई, 9 किलोमीटर दूर जंगल में कहीं चिटाई पड़ी हुई है, जहाँ पहुंची वहां से यहाँ कोई ऐसा तो नहीं जल्दी से स्कूटर ले आओ और चले जाओ, नहीं आ पाई। अब क्या करेंगे, जितनी देर तक सामायिक, धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू और धीरे धीरे मच्छर महाराज, हाँ वो मच्छर महाराज भी रहते नीचे उसमें पानी में, वो आना शुरू हुए, उनने काटना शुरू किया और ठंड ने बढ़ना शुरू किया और सब बैठे हुए चुपचाप। अब लेटने, थोड़ा तो लेटना पड़ेगा, तब सबने, सबका एक अपना स्वयं का नियम था कि जब आचर्षी लेट जाएंगे फिर हम लोग लेटेंगे। तो आचर्षी ने विश्राम करने के लिए एक करवट से लेटे, हम लोग भी लेटे। लेट गए तो उन लोगों ने, अब जो लोग खबर मिली तो आए सब, अरे महाराज वगैरह तो यहीं पर सब हैं, अब क्या इंतजाम करें, अपन क्या लगाएं। तो वो सिट्टे और रखे थे, उनने सोचा कि ढांक दें अच्छा हो जाएगा। लेटे तो सब ने ऊपर से उन सिट्टों से और बिल्कुल तोप दिया,
करवी
करवी जिसको कहे, हाँ उससे पूरा का पूरा ढक दिया। हमारे सनस्सी की घटना सुना रहा हूं, ये कह रहा हूं कि उस समय तीनों प्रकार के तप किए जा सकते हैं और तीनों तरह से मन को खेद खिन्न भी किया जा सकता, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। शरीर पर आई हुई एक कष्ट को सहन करना, जो लोग व्यवस्था नहीं कर पाए उनके प्रति भी मन को निर्मल रखना, नहीं तो मन में गाली आ रही थी उस समय, इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए, हाँ यही तो। और आ रही है सो वाणी से मत कहना, वाणी से बोलो तो प्रेम से ही बोलना, सारी तपस्या है वहां पर अगर करना चाहो तो, नहीं तो और बाकी तो जब अनुकूल तरह से सब जने कर ले तो भैया को नहीं कर ले तपस्या, प्रतिकूलता ऐसी आने पर तीनों प्रकार के तप, वो भी परोपकार के लिए और अपने स्वयं के उपकार के लिए, कितना कठिन काम है, आसान नहीं है। अब लेट गए, अब इतना भजन हो गया कि करवट नहीं बदल सकते, सवेरे उठ करके सामायिक कोई ने नहीं करी, लेटे ही लेटे सामायिक करो, अब उठो को उठो जी उठाओ ऊपर के, जब उठे हम अब सब पड़े हुए। अब लेकिन मन में अपन तो देखो, अपनी ईमानदारी से कहें कि अपन तो तपस्या में उतने मजबूत थे नहीं, कच्चे थे, अपने मन में तो यही भाव आया कि क्या व्यवस्था करती, क्या श्रावक हैं, किस तरह के श्रावक, सुबह रोड तैसा सबसे पहले डांटेंगे, सीधी ईमानदारी से कहें अपन। भाव आ गया, अभी कुछ और नहीं हुआ है, सिर्फ भाव आया, परिणाम आए हैं। और सुबेरे की सामायिक हो गई, उसके बाद सब आए, उनने सिट्टे अलग किए, तब उठे और अपने चेहरे पर तो जरा सा विषाद था, लेकिन जैसे ही दृष्टि आचार्य के ऊपर पहुंची उनके चेहरे पर तो प्रसन्नता और प्रफुल्लता ऐसे फूट रही थी जैसे कि आराम से पूरी रात गुजरी, बिल्कुल इनसे ज्यादा आराम किसी को नहीं मिला। अब अपन सहम गए, ये इतनी प्रसन्नता, और अपन बेकार में मुंह बनाए बैठे हैं, अपन भी प्रसन्न हो, अपन को भी देखो दूसरे को हंसते देख करके थोड़ी सी, और वो भी अपने गुरुजनों को देख करके, अगर गुरुजन प्रसन्न है तो फिर कैसा, आप कितने भी कष्ट में क्यों ना हो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाएगी, और अपन भी प्रसन्न हो गए, बदल गए भाव, फिर भी थोड़ा मन में ये भाव तो रहा कि कहेंगे तो जरूर एक बार। अब देखना आप, अब भक्ति हो गई, भक्ति के बाद चले। अब रास्ते में हम लोग अपनी अपनी पीड़ा तो सब लोग को रहती है, तो अपनी स्किन तो इतनी डेलिकेट नहीं है, आचर्षी से डेलिकेट तो नहीं है, आचर्षी की स्किन तो बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट है, और एकदम फेयर कलर होने की वजह से स्क्रैच ज्यों का त्यों दिखता है, सो सारे शरीर पर स्क्रैचेस, लाइन लाल 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 लाल, जहां से वो थोड़े हिले होंगे तो वहां ऐसा, यहां पूरे शरीर पर। हम लोग सोच रहे थे कि अपन को ही ऐसा हुआ, जब उनके पूरे जब धूप निकली और उसमें वो चमक रहा है उनका शरीर, और उस पर स्क्रैचेस पूरे शरीर पर, जैसे मच्छर काटते तो स्पॉट बन जाते हैं वैसे ही पूरा। और उस धूप में अब चिनमिनाहट होना भी शुरू हो गई, वो जो कटे थे उनमें भारी पीड़ा के क्षण है समझ लो आप शरीर पर, लेकिन इसके बाद भी आचार्य की प्रसन्नता जरा भी भंग नहीं हुई। हम लोगों को तो उतनी देर में यही सोच रहे थे कि कोई श्रावक मिले तो उससे दो बातें कहें, उतनी देर में आचार्य श्री कहते हैं कि कितने सौभाग्य का कल अवसर आया था, कर्म निर्जरा करने का अवसर आया था। इच्छाएं कितनी थी उस समय, लेकिन सारी इच्छाओं को जीतने का अवसर कल आया था। ऐसा वचन सुन करके और वो जो बोलने का मन था वो भी नहीं रहा, जो बुरा सोच रहे थे वो भी नहीं सोचा, और शरीर की सामर्थ्य अपने आप बढ़ गई और कष्ट ऐसे सहन हो गया कि सुबह उस धूप में भी जो है 15 किलोमीटर भटके हुए रास्ते पर चल करके अपनी जगह पहुंच गए। बताइएगा, इस तरह यदि हम अपने अपने जीवन को तैयार कर लें तब कहलाएगी कि हाँ हम भाव नहीं भाले में कम से कम भैया तीर्थंकर कैसे बनते होंगे, ये तो जरा विचार करें कि कैसे कैसे कौन सा जीव किस तरह की भावनाएं करता होगा तब तीर्थंकर प्रकृति बनती होगी। अपन तो इमेज ही कर सकते, कल्पना ही कर सकते हैं, कभी अपने जीवन में भी इस तरह की तपस्या, इस तरह के कष्ट सहन करने की सामर्थ्य, अपनी शक्ति को नहीं छुपा करके गुरुजनों के कहे अनुसार और अपनी इच्छाओं को निरोध करने का मन बने तो कोशिश करिएगा। समय आपका 10 मिनट ज्यादा लिया मैंने, उसके लिए दूसरी बार फिर क्षमा मांग रहा हूँ, एक दिन और गलती करी थी। मैं
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां, शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पद पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तमनाश वेखो प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो मानु शिव कानी है, अनुभवताए वे को जीवों के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जावानी के ज्ञान जानते सूझे लो कालो सोवाही मस्तक नमो सदा देत होंदो हे दिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गए सो पावे ग्रहे मुनिराज
मनुष्य ओम री परम पूज्य स्वामीनाथ श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में ओम री परम पूज्य स्वामीनाथ श्री भक्त सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंग पद प्राप्त है अनंग रूपा।